ये आकाशवाणी है। अब आप अरुण कुमार से समाचार सुनिए। इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष सप्ताह भर से जारी है। ईरानी मिसाइलों से मध्य और दक्षिणी इसराइल में कई स्थानों पर भारी नुकसान पहुंचा है। उधर इसराइली सुरक्षा बलों ने ईरान के अराक भारी जल परमाणु रिएक्टर पर हमला किया है। खबरों के अनुसार कल सुबह ईरानी मिसाइलों से 240 लोग घायल हुए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची आज जिनेवा में यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारतीय उच्चायोग के सदस्यों को लेकर एक और विमान के पहुंचने की संभावना है। इससे पहले उत्तरी ईरान से लाए गए 110 भारतीय छात्र नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार को ईरान से निकासी के लिए 350 से अधिक भारतीयों के अनुरोध प्राप्त हुए हैं।
हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। आज भी एक प्लेन जा रहा है फिर से तुर्कमेनिस्तान, वहां से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए, और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी हम लोग यहां से चार्टर फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने। हम लोगों के पास करीब 350 से अधिक रिक्वेस्ट आ गई हैं।
सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत इसराइल से भी भारतीय नागरिकों को निकालने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इसराइल छोड़ने के इच्छुक भारतीय नागरिकों को सीमाओं से सड़क मार्ग और उसके बाद हवाई मार्ग से भारत लाया जाएगा। तेल अवीव में भारतीय दूतावास से संपर्क करने के लिए 24 घंटे खुला रहने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस नियंत्रण कक्ष से 972-54-75-20-711 और 972-54-327-8392 नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने पर 2 सप्ताह के भीतर निर्णय लेंगे। इससे ये संकेत मिलते हैं कि अभी भी कूटनीतिक समाधान संभव है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। उधर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने बिना शर्त समर्पण करने की डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका ने किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे इस दौरान बिहार और ओडिशा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शनिवार को श्री मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून के राष्ट्रपति निकेतन में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। वे राष्ट्रपति पार्क का शिलान्यास भी करेंगी। राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन 24 जून से आम जनता के लिए खोला जा रहा है। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए देहरादून में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सिक्किम में आज से शुरू हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर आज सवेरे नाथुला दर्रे से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस साल सिक्किम के नाथुला से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर कुल 10 जत्थे जाएंगे। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जीणामणि ने आकाशवाणी को बताया कि मानसून अगले 2-3 दिनों में उत्तरी और मध्य भारत में सक्रिय हो जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू होगी। पहला मैच लीड्स के हेडिंगली क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। मलेशिया के कुचिंग में एशियाई स्क्वाश चैंपियनशिप में भारत के वेलावल सेंथिल कुमार सीधे गेमों में जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सेंथिल कुमार ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के जोआचिम चुआ को 11-7, 11-6, 11-6 से हराया और लगातार दूसरी बार एशियाई चैंपियनशिप के अंतिम 4 में पहुंच गए हैं। आज सेमीफाइनल में उनका सामना हांगकांग के दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी लाउत्स क्वान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।